क्रमांक 411। अनंत काल से जीव भ्रांति के कारण पर के कार्य करने का मिथ्या श्रम करता है, परंतु पर पदार्थ के कार्य वह बिल्कुल नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है। जीव के कर्ता क्रिया कर्म जीव में है, पुद्गल के पुद्गल में है। वर्ण गंध रस स्पर्शादि रूप से पुद्गल परिणमित होता है, जीव उन्हें नहीं बदल सकता। चेतन के भाव रूप से चेतन परिणमित होता है, जड़ पदार्थ उसमें कुछ नहीं कर सकते। तू ज्ञायक स्वभावी है, पौद्गलिक शरीर वाणी मन से तो तू भिन्न ही है, परंतु शुभाशुभ भाव भी तेरा स्वभाव नहीं है। अज्ञान के कारण तूने पर में तथा विभाव में एकत्व बुद्धि की है, वह एकत्व बुद्धि छोड़कर तू ज्ञाता हो जा। शुद्ध आत्मद्रव्य की यथार्थ प्रतीति करके शुद्ध द्रव्य दृष्टि प्रकट करके तू ज्ञायक परिणति प्रकट कर कि जिससे मुक्ति का प्रयाण प्रारंभ होगा। क्रमांक 412। मरण तो आना ही है, जब सब कुछ छूट जाएगा। बाहर की एक वस्तु छोड़ने में तुझे दुख होता है तो बाहर के समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक साथ छूटने पर तुझे कितना दुख होगा, मरण की वेदना भी कितनी होगी। कोई मुझे बचाओ, ऐसा तेरा हृदय पुकारता होगा, परंतु क्या कोई तुझे बचा सकेगा। तू भले ही धन के ढेर लगा दे, वैद्य डॉक्टर भले सर्व प्रयत्न कर छूटे, आसपास खड़े हुए अनेक सगे संबंधियों की ओर तू भले ही दीनता से टुकुर टुकुर देखता रहे, तथापि क्या कोई तुझे शरणभूत हो, ऐसा है। यदि तूने शाश्वत स्वयं रक्षित ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की प्रतीति अनुभूति करके आत्मा आराधना की होगी, आत्मा में से शांति प्रकट की होगी, तो वह एक ही तुझे शरण देगी। इसलिए अभी से वह प्रयत्न कर। सिर पर मौत मंडरा रहा है, ऐसा बारंबार स्मरण में लाकर भी तू पुरुषार्थ चला कि जिससे अब हम अमर भये न मरेंगे, ऐसे भाव में तू समाधि पूर्वक देह त्याग कर सके। जीवन में एक शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। क्रमांक 413। सर्वज्ञ भगवान परिपूर्ण ज्ञान रूप से परिणमित हो गए हैं। वे अपने को पूर्ण रूप से अपने सर्व गुणों के भूत वर्तमान भावी पर्यायों के अविभाग प्रतिच्छेदों सहित प्रत्यक्ष जानते हैं। साथ ही साथ वे स्वक्षेत्र में रहकर पर के समीप गए बिना, पर सन्मुख हुए बिना, निराले रहकर लोकालोक के सर्व पदार्थों को अतीन्द्रिय रूप से प्रत्यक्ष जानते हैं। पर को जानने के लिए वे पर सन्मुख नहीं होते, पर सन्मुख होने से तो ज्ञान दब जाता है, रुक जाता है, विकसित नहीं होता। जो ज्ञान पूर्ण रूप से परिणमित हो गया है वह किसी को जाने बिना नहीं रहता। वह ज्ञान स्वचैतन्य क्षेत्र में रहते हुए तीनों काल के तथा लोकालोक के सर्व स्व पर ज्ञेय मानो वे ज्ञान में उत्कीर्ण हो गए हो। उस प्रकार समस्त स्व पर को एक समय में सहज रूप से प्रत्यक्ष जानता है। जो बीत गया है उस सब को भी पूरा जानता है, जो आगे होना है उस सब को भी पूरा जानता है। ज्ञान शक्ति अद्भुत है। क्रमांक 414। कोई स्वयं चक्रवर्ती राजा होने पर भी, अपने पास रुद्धि के भंडार भरे होने पर भी बाहर भीख मांगता हो, वैसे तू स्वयं तीन लोक का नाथ होने पर भी, तेरे पास अनंत गुण रूप रुद्धि के भंडार भरे होने पर भी, पर पदार्थ मुझे कुछ ज्ञान देना, मुझे सुख देना, इस प्रकार भीख मांगता रहता है। मुझे धन में से सुख मिल जाए, मुझे शरीर में से सुख मिल जाए, मुझे शुभ कार्यों में से सुख मिल जाए, मुझे शुभ परिणाम में से सुख मिल जाए, इस प्रकार तू भीख मांगता रहता है। परंतु बाहर से कुछ नहीं मिलता। गहराई से ज्ञायकपने का अभ्यास किया जाए तो अंतर से ही सब कुछ मिलता है। जैसे भोंयरे में जाकर योग्य कुंची द्वारा तिजोरी का ताला खोला जाए तो निधान प्राप्त हो और दारिद्र दूर हो जाए, उसी प्रकार गहराई में जाकर ज्ञायक के अभ्यास रूप कुंजी से भ्रांति रूप ताला खोल दिया जाए तो अनंत गुण रूप निधान प्राप्त हो और भिक्षुक वृत्ति मिट जाए। क्रमांक 415। मुनिराज कहते हैं, हमारा आत्मा तो अनंत गुणों से भरपूर, अनंत अमृत रस से भरपूर अक्षय घट है। उस घट में से पतली धार से अल्प अमृत पिया जाए, ऐसे स्वसंवेदन से हमें संतोष नहीं होता। हमें तो प्रति समय पूर्ण अमृत का पान हो, ऐसी पूर्ण दशा चाहिए। उस पूर्ण दशा में सादी अनंत काल पर्यंत प्रति समय पूरा अमृत पिया जाता है और घट भी सदा परिपूर्ण भरा रहता है। चमत्कारिक पूर्ण शक्तिवान शाश्वत द्रव्य और प्रति समय ऐसी ही पूर्ण व्यक्ति वाला परिणमन, ऐसी उत्कृष्ट निर्मल दशा की हम भावना भाते हैं। ऐसी भावना के समय भी मुनिराज की दृष्टि तो सदा शुद्ध आत्मद्रव्य पर ही है। क्रमांक 416। भव भ्रमण चलता रहे, ऐसे भाव में यह भव व्यतीत होने देना योग्य नहीं है। भव के अभाव का प्रयत्न करने के लिए यह भव है। भव भ्रमण कितने दुखों से भरा है, उसका गंभीरता से विचार तो कर। नरक के भयंकर दुखों में एक क्षण निकलना भी असह्य लगता है। वहां सागरोपम काल की आयु कैसे कटी होगी। नरक के दुख सुने जाए ऐसे नहीं है। पैर में कांटा लगने जितना दुख भी तुझसे सहा नहीं जाता, तो फिर जिसके गर्भ में उससे अनंत अनंत गुने दुख पड़े हैं, ऐसे मिथ्यात्व को छोड़ने का उद्यम तू क्यों नहीं करता, गफलत में क्यों रहता है। ऐसा उत्तम योग पुनः कब मिलेगा। तू मिथ्यात्व छोड़ने के लिए जी जान से प्रयत्न कर, अर्थात साता असाता से भिन्न तथा आकुलतामय शुभाशुभ भावों से भी भिन्न ऐसे निराकुल ज्ञायक स्वभाव को अनुभवने का प्रबल पुरुषार्थ कर। यही इस भव में करने योग्य है। क्रमांक 417। सम्यक दर्शन होने के पश्चात आत्मस्थिरता बढ़ते बढ़ते बारंबार स्वरूप लीनता होती रहे, ऐसी दशा हो तब मुनिपना आता है। मुनि को स्वरूप की ओर ढलते हुए शुद्धि इतनी बढ़ गई होती है कि वे घड़ी घड़ी आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं। पूर्ण वितरागता के अभाव के कारण जब बाहर आते हैं तब विकल्प तो उठते हैं, परंतु वे गृहस्थ दशा के योग्य नहीं होते। मात्र स्वाध्याय ध्यान व्रत संयम तप भक्ति इत्यादि संबंधी मुनि योग्य शुभ विकल्प ही होते हैं और वे भी हठ रहित होते हैं। मुनिराज को बाहर का कुछ नहीं चाहिए। बाह्य में एक शरीर मात्र का संबंध है, उसके प्रति भी परम उपेक्षा है, बड़ी निस्पृह दशा है। आत्मा की ही लगन लगी है, चैतन्य नगर में ही निवास है। मैं और मेरे आत्मा की अनंत गुण ही मेरे चैतन्य नगर की बस्ती है। उसी का मुझे काम है, दूसरों का मुझे क्या काम। इस प्रकार एक आत्मा की ही धुन है, विश्व की कथा से उदास है। बस एक आत्मा में ही जीवन हो गया है, मानो चलते फिरते सिद्ध। जैसे पिता की झलक पुत्र में दिखाई देती है, उसी प्रकार जीन भगवान की झलक मुनिराज में दिखती है। मुनि छठवें सातवें गुण स्थान में रहे उतना काल कहीं आत्मशुद्धि की दशा में आगे बढ़े बिना वहीं के वहीं खड़े नहीं रहते, आगे बढ़ते जाते हैं। केवल ज्ञान न हो तब तक शुद्धि बढ़ाते ही जाते हैं, यह मुनि की अंतर साधना है। जगत की जीव मुनि की अंतरंग साधना नहीं देखते। साधना कहीं बाहर से देखने की वस्तु नहीं है, अंतर की दशा है। मुनि दशा आश्चर्यकारी है, वंद्य है। क्रमांक 418। सिद्ध भगवान को अव्याबाध अनंत सुख प्रकट हुआ सो हुआ, उसका कभी नाश नहीं होता। जिनके दुख के बीज ही जल गए हैं, वे कभी सुख छोड़कर दुख में कहां से आएंगे। एक बार जो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके भिन्न रूप परिणमित होते हैं, वे भी कभी अभिन्न रूप एक रूप नहीं होते। तब फिर जो सिद्ध रूप से परिणमित हुए, वे असिद्ध रूप से कहां से परिणमित होंगे। सिद्धत्व परिणमन प्रवाह रूप से सादी अनंत है। सिद्ध भगवान सादी अनंत काल प्रति समय पूर्ण रूप से परिणमित होते रहते हैं। यद्यपि सिद्ध भगवान के ज्ञान आनंद आदि सर्व गुण रत्नों में चमक उठती ही रहती है, उत्पाद व्यय होते ही रहते हैं, तथापि वे सर्व गुण परिणमन में भी सदा ज्यों के त्यों ही परिपूर्ण रहते हैं। स्वभाव अद्भुत है। क्रमांक 419। प्रश्न। हम अनंत काल की दुखियारे, हमारा यह दुख कैसे मिटेगा। उत्तर। मैं ज्ञायक हूँ। विभाव से भिन्न मैं ज्ञायक हूँ। इस मार्ग पर जाने से दुख दूर होगा और सुख की घड़ी आएगी। ज्ञायक की प्रतीति हो और विभाव की रुचि छूटे, ऐसे प्रयत्न के पीछे विकल्प टूटेगा और सुख की घड़ी आएगी। मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा भले ही पहले ऊपरी भाव से कर, फिर गहराई से कर, परंतु चाहे जैसे करके उस मार्ग पर जा। शुभ अशुभ भाव से भिन्न ज्ञायक का ज्ञायक रूप से अभ्यास करके ज्ञायक की प्रतीति दृढ़ करना, ज्ञायक को गहराई से प्राप्त करना, वही सादी अनंत सुख प्राप्त करने का उपाय है। आत्मा सुख का धाम है, उसमें से सुख प्राप्त होगा। क्रमांक 420। प्रश्न। जिज्ञासु को 24 घंटे आत्मा के विचार चलते हैं। उत्तर। विचार 24 घंटे नहीं चलते, परंतु आत्मा का खटका, लगन, रुचि, उत्साह बना रहता है। मुझे आत्मा का करना है, मुझे आत्मा को पहचानना है। इस प्रकार लक्ष्य बारंबार आत्मा की ओर मुड़ता रहता है। क्रमांक 421। प्रश्न। मुमुक्षु को शास्त्र का अभ्यास विशेष रखना या चिंतन में विशेष समय लगाना? उत्तर, सामान्य अपेक्षा से तो शास्त्राभ्यास चिंतन सहित होता है, चिंतन शास्त्राभ्यास पूर्वक होता है। विशेष अपेक्षा से अपनी परिणति जिसमें टिकती हो और अपने को जिससे विशेष लाभ होता दिखाई दे वह करना चाहिए। यदि शास्त्राभ्यास करने से अपने को निर्णय दृढ़ होता हो, विशेष लाभ होता हो, तो ऐसा प्रयोजनभूत शास्त्राभ्यास विशेष करना चाहिए। और यदि चिंतन से निर्णय में दृढ़ता होती हो, विशेष लाभ होता हो, तो ऐसा प्रयोजनभूत चिंतन विशेष करना चाहिए। अपनी परिणति को लाभ हो वह करना चाहिए। अपनी चैतन्य परिणति आत्मा को पहचाने यही ध्येय होना चाहिए। उस ध्येय की सिद्धि के हेतु प्रत्येक मुमुक्षु को ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा नियम नहीं हो सकता। क्रमांक 422। प्रश्न, विकल्प हमारा पीछा नहीं छोड़ते? उत्तर, विकल्प तुझे लगे नहीं है, तू विकल्पों को लगा है। तू हट जाना, विकल्पों में रंच मात्र सुख और शांति नहीं है, अंतर में पूर्ण सुख एवं समाधान है। पहले आत्मस्वरूप की प्रतीति होती है, भेद ज्ञान होता है, पश्चात विकल्प टूटते हैं और निर्विकल्प स्वानुभूति होती है। क्रमांक 423। प्रश्न, सर्वगुणांश सो सम्यक्त्व कहा है, तो क्या निर्विकल्प सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के सर्व गुणों का आंशिक शुद्ध परिणमन वेदन में आता है? उत्तर, निर्विकल्प स्वानुभूति की दशा में आनंद गुण की आश्चर्यकारी पर्याय प्रकट होने पर आत्मा के सर्व गुणों का यथासंभव आंशिक शुद्ध परिणमन प्रकट होता है और सर्व गुणों की पर्यायों का वेदन होता है। आत्मा अखंड है, सर्व गुण आत्मा के ही है, इसलिए एक गुण की पर्याय का वेदन हो उसके साथ साथ सर्व गुणों की पर्याय अवश्य वेदन में आती है, भले ही सर्व गुणों के नाम ना आते हो और सर्व गुणों की संज्ञा भाषा में होती भी नहीं, तथापि उनका संवेदन तो होता ही है। स्वानुभूति के काल में अनंत गुण सागर आत्मा अपने आनंदादि गुणों की चमत्कारिक स्वाभाविक पर्यायों में रमण करता हुआ प्रकट होता है। वह निर्विकल्प दशा अद्भुत है, वचनातीत है। वह दशा प्रकट होने पर सारा जीवन पलट जाता है। क्रमांक 424। प्रश्न, आत्मद्रव्य का बहु भाग शुद्ध रहकर मात्र थोड़े भाग में ही अशुद्धता आई है ना? उत्तर, निश्चय से अशुद्धता द्रव्य के थोड़े भाग में भी नहीं आई है, वह तो ऊपर ऊपर ही तैरती है। वास्तव में यदि द्रव्य के थोड़े भी भाग में अशुद्धता आए, अर्थात द्रव्य का थोड़ा भी भाग अशुद्ध हो जाए, तो अशुद्धता कभी निकलेगी ही नहीं, सदाकाल रहेगी। बद्ध स्पृष्टत्व आदि भाव द्रव्य के ऊपर तैरते हैं, परंतु उसमें सचमुच स्थान नहीं पाते। शक्ति तो शुद्ध ही है, व्यक्ति में अशुद्धता आई है। क्रमांक 425। प्रश्न, जिज्ञासु जीव तत्व को यथार्थ धारण करने पर भी किस प्रकार अटक जाता है? उत्तर, तत्व को धारण करने पर भी जगत के किन्हीं पदार्थों में गहरे गहरे सुख की कल्पना रह जाए अथवा शुभ परिणाम में आश्रय बुद्धि रह जाए इत्यादि प्रकार से वह जीव अटक जाता है। परंतु जो खास जिज्ञासु आत्मार्थी हो और जिसे खास प्रकार की पात्रता प्रकट हुई हो वह तो कहीं अटकता ही नहीं और उस जीव को ज्ञान की कोई भूल रह गई हो तो वह भी स्वभाव की लगन के बल से निकल जाती है। अंतर की खास प्रकार की पात्रता वाला जीव कहीं अटके बिना अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है। क्रमांक 426। प्रश्न: मुमुक्षु को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर: अनादि काल से आत्मा ने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा है, परंतु भ्रांति के कारण छोड़ दिया है, ऐसा उसे भासित हुआ है। अनादि काल से द्रव्य तो शुद्धता से भरा है, ज्ञायक स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप ही है, उसमें अनंत चमत्कारिक शक्ति भरी है। ऐसे ज्ञायक आत्मा को सबसे भिन्न, पर द्रव्य से भिन्न, पर भावों से भिन्न जानने का प्रयत्न करना चाहिए, भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, ज्ञायक आत्मा को पहचानना चाहिए। ज्ञायक स्वरूप हूँ ऐसा अभ्यास करना चाहिए, उसकी प्रतीति करना चाहिए। प्रतीति करके उसमें स्थिर हो जाने पर उसमें जो अनंत चमत्कारिक शक्ति है वह प्रकट अनुभव में आती है। क्रमांक 427। प्रश्न: मुमुक्षु जीव पहले क्या करे? उत्तर: पहले द्रव्य गुण पर्याय सबको पहचाने, चैतन्य द्रव्य के सामान्य स्वभाव को पहचान कर उस पर दृष्टि करके उसका अभ्यास करते करते चैतन्य उसमें स्थिर हो जाए तो उसमें जो विभूति है वह प्रकट होती है। चैतन्य के असली स्वभाव की लगन लगे तो प्रतीति हो, उसमें स्थिर हो तो उसका अनुभव होता है। सबसे पहले चैतन्य द्रव्य को पहचानना, चैतन्य में ही विश्वास करना और पश्चात चैतन्य में ही स्थिर होना तो चैतन्य प्रकट हो, उसकी शक्ति प्रकट हो। प्रकट करने में अपनी तैयारी होना चाहिए, अर्थात उग्र पुरुषार्थ बारंबार करें, ज्ञायक का ही अभ्यास, ज्ञायक का ही मंथन, उसी का चिंतवन करें तो प्रकट हो। पूज्य गुरुदेव ने मार्ग बतलाया है, चारों ओर से स्पष्ट किया है। क्रमांक 428। प्रश्न: आत्मा की विभूति को उपमा देकर समझाइए। उत्तर: चैतन्य तत्व में विभूति भरी है, कोई उपमा उसे लागू नहीं होती। चैतन्य में जो विभूति भरी है वह अनुभव में आती है, उपमा क्या दी जाए? क्रमांक 429। प्रश्न: प्रथम आत्मानुभव होने से पूर्व अंतिम विकल्प कैसा होता है? उत्तर: अंतिम विकल्प का कोई नियम नहीं है, वेद ज्ञान पूर्वक शुद्धात्म तत्व की सन्मुखता का अभ्यास करते करते चैतन्य तत्व की प्राप्ति होती है, जहाँ ज्ञायक की ओर परिणति ढल रही होती है वहाँ कौन सा विकल्प अंतिम होता है, अर्थात अंत में अमुक ही विकल्प होता है। ऐसा विकल्प संबंधी कोई नियम नहीं है। ज्ञायक धारा की उग्रता तीक्ष्णता हो वहां विकल्प कौन सा, उसका संबंध नहीं है। वेद ज्ञान की उग्रता उसकी लगन उसकी तीव्रता होती है, शब्द द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। अभ्यास करें, गहराई में जाएं, उसके तल में जाकर पहचाने, तल में जाकर स्थिर हो तो प्राप्त होता है, ज्ञायक प्रकट होता है। क्रमांक 430। प्रश्न, निर्विकल्प दशा होने पर वेदन किसका होता है, द्रव्य का या पर्याय का? उत्तर, दृष्टि तो ध्रुव स्वभाव की ही होती है, वेदन होता है आनंदादि पर्यायों का, द्रव्य तो स्वभाव से अनादि अनंत है, जो पलटता नहीं है बदलता नहीं है। उस पर दृष्टि करने से, उसका ध्यान करने से अपनी विभूति का प्रकट अनुभव होता है। क्रमांक 431। प्रश्न, निर्विकल्प अनुभूति के समय आनंद कैसा होता है? उत्तर, उस आनंद की किसी जगत के विभाव के आनंद के साथ बाहर की किसी वस्तु के साथ तुलना नहीं है। जिसको अनुभव में आता है वह जानता है, उसे कोई उपमा लागू नहीं होती। ऐसी अचिंत्य अद्भुत उसकी महिमा है। क्रमांक 432। प्रश्न, आज वीर निर्वाण दिन के प्रसंग पर कृपया दो शब्द कहिए। उत्तर, श्री महावीर तीर्थादिनाथ आत्मा के पूर्ण अलौकिक आनंद में और केवल ज्ञान में परिणमते थे। आज उन्होंने सिद्ध दशा प्राप्त की। चैतन्य शरीरी भगवान आज पूर्ण अकंप होकर अयोगी पद को प्राप्त हुए। चैतन्य पिंड पृथक हो गया, स्वयं पूर्ण चित्रूप होकर चैतन्य बिंब रूप से सिद्धालय में विराज गए। अब सदा समाधि सुख आदि अनंत गुणों में परिणमन करते रहेंगे। आज भरत क्षेत्र से त्रिलोकीनाथ चले गए, तीर्थंकर भगवान का वियोग हुआ, वीर प्रभु का आज विरह पड़ा। इंद्रों ने ऊपर से उतरकर आज निर्वाण महोत्सव मनाया, देवों द्वारा मनाया गया वह निर्वाण कल्याणक महोत्सव कैसा दिव्य होगा। उसका अनुसरण करके आज भी लोग प्रतिवर्ष दिवाली के दिन दीपमाला प्रज्वलित करके दीपावली महोत्सव मनाते हैं। आज वीर प्रभु मोक्ष पधारे, गणधर देव श्री गौतम स्वामी तुरंत ही अंतर में गहरे उतर गए और वितराग दशा प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। आत्मा के स्वक्षेत्र में रहकर लोकालोक को जानने वाला आश्चर्यकारी स्व पर प्रकाशक प्रत्यक्ष ज्ञान उन्हें प्रकट हुआ। आत्मा के असंख्य प्रदेशों में आनंदादि अनंत गुणों की अनंत पूर्ण पर्यायी प्रकाशमान हो उठी। अभी इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान का विरह है, केवल ज्ञानी भी नहीं है। महाविदेह क्षेत्र में कभी तीर्थंकर का विरह नहीं होता, सदैव धर्मकाल वर्तता है। आज भी वहां भिन्न भिन्न विभागों में एक एक तीर्थंकर मिलाकर 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं। वर्तमान में विदेह क्षेत्र के पुष्कलावती विजय में श्री सिमंदरनाथ विचर रहे हैं। और समवसरण में विराजकर दिव्य ध्वनि के स्रोत बहा रहे हैं। इस प्रकार अन्य विभागों में अन्य तीर्थंकर भगवंत विचर रहे हैं। यद्यपि वीर भगवान निर्वाण पधारे हैं, तथापि इस पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में वीर भगवान का शासन प्रवर्त रहा है, उनका उपकार वर्त रहा है। वीर प्रभु की शासन में अनेक समर्थ आचार्य भगवान हुए, जिन्होंने वीर भगवान की वाणी के रहस्य को विविध प्रकार से शास्त्रों में भर दिया है। श्री कुंद कुंदादि समर्थ आचार्य भगवंतों ने दिव्य ध्वनि के गहन रहस्यों से भरपूर परमागम्य की रचना करके मुक्ति का मार्ग अद्भुत रीति से प्रकाशित किया है। वर्तमान में श्री कहान गुरुदेव शास्त्रों के सूक्ष्म रहस्य खोलकर मुक्ति का मार्ग स्पष्ट रीति से समझा रहे हैं। उन्होंने अपने सातिशय ज्ञान एवं वाणी द्वारा तत्व का प्रकाशन करके भारत को जागृत किया है। गुरुदेव का अमाप उपकार है। इस काल ऐसे मार्ग समझाने वाले गुरुदेव मिले वह अहोभाग्य है। सातिशय गुण रत्नों से भरपूर गुरुदेव की महिमा और उनके चरण कमल की भक्ति अहोनिश अंतर में रहो। पूज्य गुरुदेव श्री के अंतेवासी बाल ब्रह्मचारी श्री चंदुलाल झोबाड़िया अपने शास्त्र वाचन में पूज्य बहन श्री की महिमा इस प्रकार से करते थे।
समाज पर विशिष्ट उपकार उपकार के कहान गुरु नो जे अनेक विध उपकार ये उपकार ने प्रकाशित करना नाम शू बेन ज्ञान वैभव। तो ज्ञान वैभव जो द्विअर्थक है एम बे अर्थ रहे खरखे बेन नो ज्ञान वैभव शू કે સાધનાને સહાનુભૂતિ જે છે પ્રગટી છે આત્મા આત્માનુભૂતિ એ તો મોક્ષનો માર્ગ છે, એ તો એનો અંતરંગ વૈભવ છે। બાહ્ય વૈભવ તો ગુરુદેવનો અંતરંગ વૈભવ શું હતો? એ સહાનુભૂતિ અંતરંગ વૈભવ હતો, બાહ્ય વૈભવ એનો મનોયોગ ને વચન યોગ હતો કે જેમના વચન યોગથી સાતિશય વાણીથી એ સુમોક્ષણ સત્વને ઝળકાવી દીધું। બેનશ્રીમાં એ વિશેષતા તો હતી જ, પણ ગુરુદેવની અનુપસ્થિતિમાં બધા ખુલાસા કરવાની જવાબદારી માતાજીની આવી અને માતાજી એવા અદભુત ખુલાસા કર્યા છે, તો એ પણ એમનો મનોયોગ ને વચન યોગ છે। પણ એ ઉપરાંત એમને આ એક વૃદ્ધિ છે, જાતિ સ્મરણ, જાતિ સ્મૃતિ, જાતિ અને જન્મ, પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ, જન્મનું સ્મરણ એને જાતિ સ્મૃતિ કહેવામાં આવે છે। ખરેખર મહિમા તો જે છે જ્ઞાન વૈભવ અને અંદર એમની સાધના અને શુદ્ધિની જે અંદર છે એનો જ મહિમા છે, પણ એની સાથે સાથે આ જે જાતિ સ્મરણનો વૈભવનો આપણે મહિમા કરી શા માટે? મૌલી આપણા તારણ સાથે તીર્થંકરનું દ્રવ્ય પ્રકાશિત કર્યું છે, સિમંદર ભગવાનના મુખથી નીકળેલો કે આ રાજકુમાર પરક્ષેત્રમાં ભવિષ્યમાં જાય છે, ભય જન્મ લઈને એ કુંદકુંદ આચાર્યનો માર્ગ અનુસાર પ્રવર્તશે, પ્રવર્તાવશે, અને આ જ રાજકુમાર ભવિષ્યમાં તાત્કાલિક ખંડના વિદેહ ક્ષેત્રમાં સૂર્યકૃતિ નામના તીર્થક થશે। કોની વાણી છે? સિમંદર ભગવાનની વાણી છે। એ બધું મળ્યું છે માતાજીના જ્ઞાન વૈભવમાંથી મળ્યું છે।